समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
सपनों से भरे नैना, तो नींद है ना चैना। सपनों से भरे नैना, तो नींद है ना चैना।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभु कुमार का मशल किया है।
ऐसी डगर कोई अगर जो अपनाए हर राह के वो अंत पे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू यू मनोज एंड ऑल यू लवली पीपल ट्यून इन टू अस दिस ब्यूटीफुल ट्यूसडे मॉर्निंग। सो वी आर रेडी हियर विद अनदर वंडरफुल एडिशन ऑफ आज सवेरे। सो स्टे विद अस, एंजॉय। We begin with some news headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख उखना के साथ वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों के समूचे पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। मंगोलिया के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख उखना कल 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। मंगोलिया के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी, व्यापारिक नेता और सांस्कृतिक प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति खुरेल सुख की ये पहली भारत यात्रा है।
U.S. President Donald Trump and the leaders of Egypt, Qatar and Turkey have signed a declaration for bringing peace to Gaza at a summit in the Egyptian resort of Sharm el-Sheikh last night in the presence of over 30 global leaders and national representatives. The signing took place at the peace summit where the four leaders acted as guarantors of the Hamas-Israel ceasefire agreement. The deal reached earlier this week is a key part of Trump's broader regional peace plan. Speaking at the summit, President Trump said, "This is a tremendous day for the world and for the Middle East." He thanked the regional leaders for their support, saying, "Everybody is happy," and added that he has done big deals before, but this has taken off like a rocket ship. Leaders and representatives from over 30 countries and international bodies took part in the summit, including India, UK, France, Germany, Canada, Saudi Arabia, European Union, and UAE, among others.
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पेरिस समझौते के एक दशक पूरे होने पर COP30 को बहुपक्षवाद, समता और सामूहिक संकल्प में विश्वास स्थापित करना चाहिए, ताकि लोगों और पृथ्वी के लिए वास्तविक और समुचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने ब्रासिलिया में प्री COP30 मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत किस तरह से कार्य और सहयोग को मूर्त रूप देने वाली घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पहलों का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि COP30 को अनुकूलन केंद्रित कॉप बनाना चाहिए, जो वित्त, सहयोग और स्थानीय स्तर पर समाधानों को आगे बढ़ाए।
The Indian Army will host the United Nations Troop Contributing Countries, UNTCC, Chiefs Conclave in New Delhi beginning today. The 3-day conclave, bringing together senior military leadership from 32 nations to deliberate on operational challenges, evolving threats, share best practices and build shared understanding on future peacekeeping. Defence Minister Rajnath Singh will address the inaugural session of the conclave today. The session will also feature chiefs and heads of delegations putting forth their viewpoints. Defence exhibitions for shared capacity building, bilaterals and cultural exchanges will also feature during the conclave.
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की जांच का पहला चरण पूरा हो गया है। आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने ये प्रक्रिया पूरी की। आयोग ने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित विधानसभा के स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। ये सूची सभी प्रत्याशियों के साथ भी साझा की जाएगी।
The Central Board of Trustees of the Employees Provident Fund or EPF has approved simplified partial withdrawal provisions by merging 13 complex rules into a single provision to enhance the ease of living for EPF members. This decision was taken at the 238th meeting of the CBT held in New Delhi, chaired by Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya. In a statement, the Ministry of Labour and Employment said that members will now be able to withdraw up to 100% of the eligible balance in their Provident Fund, including both the employees' and employers' share. The board has also liberalised withdrawal limits, allowing education withdrawals up to 10 times and marriage withdrawals up to 5 times the existing partial withdrawal limits. The requirement of minimum service has been uniformly reduced to just 12 months for all partial withdrawals. Moving on to the world of sports now. In cricket, India are just 58 runs away from victory against West Indies in second test in Delhi. We have more from our sports desk.
Shubman Gill-led side is close to clean sweep the series with 2-0. The hosts will resume their second innings at an overnight score of 63-1. Earlier on day 4, John Campbell and Shai Hope made turns that kept West Indies alive. However, India's bowling attack restricted the visitors. India then began their second innings to chase 121 runs but soon lost Jaiswal's wicket. However, KL Rahul and Sai Sudarshan steadied the chase and ended day 4 firmly. Next we have from badminton, star Indian shuttler Lakshya Sen and top men's doubles pair of Chirag Shetty and Sattvik Sairaj will lead India's challenge at the Denmark Open starting today. Sen will be joined in men's singles by Ayush Shetty, while another pair of Sai Pratik and Prithvi Krishnamurthy Roy will also be in action. On to football, senior Indian men's team will take on Singapore in the fourth match of the AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 qualifiers final round in Goa today. The match will kick off at 7:30 p.m. Earlier, India began their AFC Under-17 Women's Asian Cup China 2026 qualifiers campaign with a thrilling 2-1 win over host Kyrgyz Republic in Bishkek yesterday. India now sit at top of Group G with only one team from the group progressing to the 12-team finals in China next year. With Aishwarya, this is Chirag Jha, Sports Day.
अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का।
यस मनोज, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। द ऑफिशियल्स ऑफ द सीजीएसटी चेन्नई नॉर्थ कमिश्नरेट हैव बस्टेड अ मेजर फेक जीएसटी इनवॉइस रैकेट व्हिच ऑपरेटेड to fraudulently pass on input tax credit worth approximately rupees 10 crore on bogus invoices valued at about rupees 59 crore. The commissionerate has arrested two key persons involved in this large-scale tax evasion racket. One of the arrested individuals is the proprietor of the firm engaged in availing and passing on fake ITC, while the other is his associate who was actively involved in the issuance of fake GST invoices. Bengaluru News Now. The National Disaster Relief Force Day was organized by Bengaluru City University along with the Red Cross Cell and Bharatiya Red Cross Society in Bengaluru yesterday. Inaugurating the program, Professor B. Ramesh, the Vice-Chancellor of the University, spoke on the important role played by NDRF Disaster Relief Force in the rescue and relief measures during the natural calamities. He called upon the youth to learn about disaster relief measures so that they can be of help to the community during any disaster. Speaking on this occasion, the head of Bharatiya Red Cross Society in Bengaluru, Balakrishna Shetty, said that they work hard in hand with NDRF during the disaster. Over 500 students were briefed about the measures to be taken during the disaster so that those in distress could be rescued. And now we are going to Hyderabad. Hyderabad City Police Commissioner V.C. Sajjanar has launched an innovative social media campaign to promote responsible driving by taking up Safe Ride Challenge. This challenge encourages citizens to make road safety a viral movement. The initiative calls on motorists to record a short video or take a photo before starting their ride, showing themselves wearing helmets or fastening seat belts, and then tag three friends or family members to do the same. The hashtag Safe Ride Challenge emphasizes three simple yet vital actions before every journey: fastening seat belts, wearing helmets, and inspiring others to follow suit. The campaign aimed at creating a chain of positive influence, particularly among youth and regular commuters. By leveraging social media engagement, the Hyderabad police hope to instill a strong culture of accountability and self-awareness among road users. And Manoj, let's go to other cities now from your...
Ji, pehle Delhi ki khabar. दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज क्षेत्र के लगभग 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को प्रदूषण से बचाने और पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में देशी पेड़ लगाएगी ताकि मिट्टी उपजाऊ बनी रहे और पर्यावरण को और मजबूत बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता दिल्ली को एक आधुनिक, प्रदूषण मुक्त, हरित और पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित राजधानी बनाना है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये निर्णय राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाएगा। दिल्ली की एक और खबर, दिल्ली सरकार ने समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने उत्तर पश्चिमी जिले में कल नशा मुक्ति अभियान की प्रगति और रणनीति को लेकर एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री सिंह ने दिल्ली पुलिस और ड्रग्स कंट्रोल विभाग को अन्य विभागों के सहयोग से नशे से प्रभावित पॉकेट्स और क्लस्टर्स को नशा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे एरिया पूरी दिल्ली के लिए मॉडल बनेंगे, साथ ही वे ऐसे क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण करेंगे। अब मुंबई, महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने राज्य भर में आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए मसौदा मतदाता सूची पर आपत्तियां और सुझाव प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। एक आधिकारिक सूचना के अनुसार नागरिक 8 अक्टूबर को प्रकाशित सूची पर 17 अक्टूबर तक अपनी आपत्तियां भेज सकते हैं। आयोग ने बताया है कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि 28 अक्टूबर के बजाय 31 अक्टूबर कर दी गई है। महाराष्ट्र की एक और खबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC के लगभग 85,000 कर्मचारियों के लिए 6,000 रुपए के दिवाली बोनस की घोषणा की है। सोमवार को मुंबई में राज्य परिवहन कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद पत्रकारों को श्री शिंदे ने बताया कि पात्र कर्मचारी 12,500 रुपए का अतिरिक्त त्यौहार एडवांस भी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि परिवहन विभाग की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार के प्रयास जारी हैं और MSRTC के स्वामित्व वाले भूखंडों को सार्वजनिक निजी आधार पर विकसित करने के लिए बातचीत चल रही है। अब कोलकाता की खबर, मौसम विभाग के अंतर्गत अलीपुर मौसम कार्यालय ने आकाशवाणी को बताया है कि सोमवार को पश्चिम बंगाल से मॉनसून वापस लौट गया है। आने वाले 7 दिनों में पश्चिम बंगाल में बारिश का कोई स्पष्ट पूर्वानुमान नहीं है। कोलकाता सहित उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। दिन के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी। पश्चिमी जिलों में दिन के न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सुभद्रा से।
Yes, Manoj, Chennai is expected to have partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and the maximum will be around 31 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The minimum temperature was 20 degrees Celsius. The maximum will be around 30 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. And the temperature will hover between a minimum of 23 degrees Celsius and a maximum of 30 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 14 अक्टूबर है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आइए नजर डालते हैं। 1882 में आज ही के दिन शिमला में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के बाद स्थापित किया गया भारत का चौथा विश्वविद्यालय था।
Going back in time now, Manoj, this is the year 1066. The historic Battle of Hastings took place this day. King Harold II of England was defeated by the invading army of William, Duke of Normandy in the Norman Conquest, establishing Normans as rulers of England. And 1322, Robert the Bruce of Scotland defeats King Edward II of England at Byland, forcing Edward to accept Scotland's independence.
1956 में आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ कोचांदा में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने समर्थकों को 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने की सलाह दी।
1879 this day, US, that's American inventor and businessman Thomas Alva Edison, filed his first patent application for improvement in electric lights this day. This happened in 1879. 1892, The Adventure of Sherlock Holmes, a collection of short stories by British writer Arthur Conan Doyle was first published. And 1933 this day, Germany withdraws from the League of Nations and World Disarmament Conference.
आज ही के दिन 1997 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
1933 जर्मनी बिग पार्डन 1944 जर्मन फील्ड मार्शल अर्विन रोमल कमिटेड सुसाइड रादर देन फेस ट्रायल एंड सर्टेन एग्जीक्यूशन फॉर एलिजिबली कंस्पायरिंग अगेंस्ट अडोल्फ हिटलर। And in the year 1964, civil rights activist Martin Luther King Jr. was announced as winner of the Nobel Peace Prize on this day.
आज ही के दिन 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड्स की जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त 200 अरब रुपए जारी करने की घोषणा की। और आज ही के दिन 2010 में राजधानी दिल्ली में चल रहे 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ। और अब
Yes,
now याद
getting,
करते हैं।
Yes, getting to some personalities. And Manoj, let's start with Arun Khetrapal, PPC. Born in Pune, Maharashtra, he was an officer of the Indian Army and a posthumous recipient of the Paramveer Chakra, India's highest military decoration for valor. He was martyred in the Battle of Basantar at a tender age of 21. And of course, this happened during the Indo-Pakistan War of 1971, where his actions earned him his honor. And he was born this day in 1950. He joined the National Defense Academy in June 1967. And he belonged to Foxtrot Squadron and was the squadron cadet captain on the 38th Corps. And then you have something on him?
जी, 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध जो है 17 दिसंबर 1971 तक चला। इसमें पाकिस्तान ने मुंह की खाई। वो न केवल हार गया बल्कि उससे टूटकर उसका हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्मा जो बांग्लादेश कहलाया। इस युद्ध में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल उन्हीं में से एक है।
Yes, and, You have something on him?
हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है।
आज पुण्यतिथि है शोभा नायडू की। उनका जन्म 1956 को अनकापल्ली विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। वे भारत की प्रमुख कुचिपुड़ी नर्तकियों में से एक थीं। वे प्रसिद्ध स्वामी वंपत्ति चिन्ना सत्यम की एक उत्कृष्ट शिष्या थीं। एक गुरु के रूप में शोभा नायडू ने भारत और विदेशों के कई छात्रों को प्रशिक्षित किया। अपनी नृत्य कला से उन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी सराहना पाई। शोभा नायडू ने अमेरिका के कई शहरों और ब्रिटेन समेत अन्य देशों में भी प्रस्तुतियां दी। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार और कई प्रतिष्ठित संगठनों से भी कई पुरस्कार मिले।
Birth anniversary tribute to Sir Roger Moore, the English actor, the James Bond who dominated the Bond movies from mid-70s till mid-80s. Moore started his career as a child actor, gaining international fame in the 1960s with the television series The Saint before taking over the role of James Bond in 1973, a role he played until 1985. And some movies that are still popular, let me list out a few now, friends. Live and Let Die, For Your Eyes Only, A View to Kill, A Man with a Golden Gun, and The Spy Who Loved Me. He passed away at the age of 89 in the year 2017.
आज पुण्यतिथि है भारतीय सिनेमा के पहले अभिनेता गायक वजीर मोहम्मद खान की। सिनेमा की शुरुआत में जब फिल्मों में सिर्फ इशारों और इमोशंस के जरिए कहानी कही जाती थी, तब एक ऐसा दौर आया जिसने इस खामोशी को तोड़ा। उस दौर में एक ऐसी फिल्म आई जिसने फिल्मों में न सिर्फ आवाज दी बल्कि संगीत भी दिया। आज हम आपको बॉलीवुड के सबसे पहले गाने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हिंदी सिनेमा में गानों और म्यूजिक की नींव रखी। हम यहाँ 1931 में आई फिल्म आलम आरा के गाने दे दे खुदा के नाम पर प्यारे की बात कर रहे हैं, जिसको भारतीय सिनेमा का सबसे पहला फिल्मी गाना माना जाता है। करीब 94 साल पहले बना ये गाना आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इसकी सादगी, इमोशन और धार्मिक भाव इसे और खास बनाते हैं। ये गाना उस दौर में एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया था। इस गीत को गाया था अभिनेता गायक वजीर मोहम्मद खान ने। उन दिनों गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए तकनीक की सुविधा नहीं थी। दिन के शोर शराबे से बचने के लिए दे दे खुदा के नाम पर शीर्षक के गीत को किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि रात के समय सड़क पर रिकॉर्ड किया गया था। इस फिल्म में वजीर मोहम्मद खान ने एक फकीर की भूमिका निभाई थी और खुद ही इस गीत को गाया था। आइए सुनते हैं इस गीत को।
दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की दे दे, कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की ले ले।
And friends, after that beautiful tune, the heartthrob of the 60s, Sir Cliff Richard turns 85 today. Born in our own land, that's Lucknow, India, in the year 1940, Cliff's real name is Harry Roger Webb. With his backing group, The Shadows, he dominated the British popular music scene. Even before the Fab Four, that's the Beatles, entered the music scene, that would be the late 1950s and the early 1960s. Indeed, friends, Sir Cliff Richard was the one who opened the doors on the British Isles to a new world of music. His sugary pop sound made him the biggest music act in the world. And beyond music, Richard is also an actor who has starred in several feature films and a businessman. And he's also been involved in philanthropy and campaigns for his Christian faith. So let me jog my memory and list out a few songs that are legendary: Bachelor Boy, Summer Holiday, Young Ones, Congratulations, We Don't Talk Anymore, Constantly, Living Doll, and much more. We're going to listen to two of them right now. Here goes.
The young ones, darling, we're the young ones.
young ones shouldn't be afraid to live low while the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. When I was young, my father said, "Son, I have something to say." And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, "Son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay.
गीत को उगते हुए सूरज तरीके छंद दो, शौर्य को फिर शत्रु की हुंकार का अनुबंध दो, प्राण रहते तो न देंगे भूमि तिल भर देश की, फिर भुजाओं को नए संकल्प रक्षा बंध दो। ये काव्य रचना है शैलेश मटियानी की। आज जयंती है शैलेश मटियानी की। शैलेश मटियानी का मूल नाम रमेश चंद्र मटियानी था, लेकिन मशहूर हुए शैलेश मटियानी के नाम से ही। शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के बाड़े छीना नामक गांव में 14 अक्टूबर 1931 को हुआ था। शैलेश हिंदी साहित्य जगत में नई कहानी विधा के अग्रणी कथाकार थे। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। जन कवि बाबा नागार्जुन उन्हें हिंदी का गोरकी कहते थे। 1950 से ही उन्होंने कविताएं और कहानियां लिखनी शुरू कर दी थीं। शुरू में वे रमेश मटियानी शैलेश नाम से लिखते थे। उनकी आरंभिक कहानियां रंगमहल और अमर कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुईं। उन्होंने बोरीवली से बोरी बंदर तथा मुठभेड़ जैसे उपन्यास, चील अर्धांगिनी जैसी कहानियों के साथ ही अनेक निबंध और प्रेरणादायक संस्मरण भी लिखे हैं।
And friends, today is the birthday of Justin Hayward, singer, songwriter, guitarist, composer of the British progressive rock band The Moody Blues, from its very beginning, that is in 1966, till it split up, disbanded in 2018. In fact, Hayward is the last surviving member of the classic Moody Blues lineup, as we just lost bass guitarist, co-lead vocalist and songwriter John Large just last Tuesday. So we have a track for both of them, In Your Wildest Dreams, for Justin Hayward's birthday boy, and also for John Lodge, the late John Lodge.
Once upon a time, once when you were mine, I remember your skies reflected in your eyes. I wonder where you are, I wonder if you think about me. Once upon a time, in your wildest dream. Once the world was new, our bodies felt the morning dew that greets the brand new day. We couldn't tear ourselves away. I wonder if you can, I wonder if you still remember.
आज जन्मदिन है शिवा बालाजी मनोहर का। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1980 को चेन्नई में हुआ है। वे एक भारतीय अभिनेता और टीवी हस्ती हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वे बिग बॉस तेलुगु के पहले सीजन के विजेता थे। बालाजी अपनी पहली फिल्म ईदी माँ अशोक गादी लव स्टोरी में नजर आए। उसके बाद इला चेप्पनु और दोस्त में मुख्य भूमिकाएं उन्होंने निभाई। उन्हें सुकुमार द्वारा निर्देशित फिल्म आर्या में बड़ा ब्रेक मिला। इसके बाद उनकी फिल्म संक्रांति आई, जिसमें उन्होंने अभिनेता दग्गुबाती, वेंकटेश और श्रीकांत के साथ अभिनय किया। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया एक गीत।
Yeah, yeah, so we go.
अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।